दूर नहीं है। भगवान वाच, भगवान अपने बच्चों को राजयोग और ज्ञान सिखला रहा है। ये कोई मनुष्य नहीं है। गीता में लिखा हुआ है कृष्ण भगवान वाच। अब श्री कृष्ण सारी दुनिया को माया से लिबरेट करे ये तो संभव नहीं है। बाप आकर बच्चों के प्रति समझाते हैं, जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सन्मुख बैठे हैं इनको समझाते हैं। उन बच्चों को आकर के समझाते हैं जिन्होंने बाप को अपना बनाया है और बाप के सन्मुख बैठे हैं। कृष्ण को बाप नहीं कहा जा सकता। बाप को कहा जाता है परम पिता, परम धाम में रहने वाला। जब कोई मनुष्य भगवान को याद करते हैं, आत्मा याद करती है शरीर द्वारा। बाप बैठ समझाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप परम धाम में रहने वाला हूँ। कौन से धाम में? परम धाम। और कृष्ण कहाँ का रहने वाला है? बैकुंठ धाम। तो बैकुंठ धाम में और परम धाम में क्या अंतर हुआ? परम धाम है बैकुंठ से भी परे, जिससे परे कोई चीज होती नहीं, कोई धाम होता नहीं, कोई स्थान नहीं होता। तो मैं सभी आत्माओं का बाप हूँ, ऊंचे से ऊंची स्टेज में रहने वाला। मैंने ही कल पहले भी बच्चों को आकर के सिखलाया था कि बुद्धि का योग मुझे परम पिता से लगाओ। आत्माओं से बात की जाती है। आत्मा जब तक शरीर में ना आए तो आंखों द्वारा देख न सके, कानों द्वारा सुन न सके। आत्मा बिगर शरीर जड़ हो जाती है। तो सुप्रीम सोल भी क्या है? आत्मा है। अगर वो शरीर न धारण करे तो वो भी क्या हुई? जैसे जड़ हो गई। तो किसको याद करते हो?
चैतन्य
है? चैतन्य को याद करते? तो चैतन्य जो है वो सिर्फ ज्योति बिंदु है या शरीर सहित है? आत्मा तो चैतन्य है, गर्भ में बच्चा है, परंतु जब तक उसमें आत्मा ने प्रवेश नहीं किया है तब तक चुरपुर नहीं होती। तो ऐसी चैतन्य आत्माओं से बाप बात करते हैं, कहते हैं मैंने ये शरीर लोन पर लिया है, मैं आकर सभी आत्माओं को वापस ले जाता हूँ। फिर जो आत्माएं सन्मुख होती हैं, उन्हों को राजयोग सिखाता हूँ और जो विमुख होती है, विमुख माना विपरीत बुद्धि, उनको राजयोग नहीं सिखाता हूँ। राजयोग कोई सारी दुनिया नहीं सीखेगी। कल पहले वाले राजयोग सीख रहे हैं, अब बाबा समझाते हैं बुद्धि का योग बाप के साथ अंत तक लगाते आना है, इसमें अटकना नहीं है। स्त्री पुरुष होते हैं तो पहले एक दो को जानते भी नहीं है, फिर जब दोनों की सगाई होती है फिर कोई 50-60-70 वर्ष भी इकट्ठे रहते हैं। तो सारी जीवन जिस्म जिस्म को याद करते रहते हैं। वो कहेगी ये मेरा पति है, वो कहेगा ये मेरी पत्नी है। अब तुम्हारी सगाई हुई है निराकार से, निराकार बाप नहीं आकर के सगाई कराई है। कहते हैं कल पहले माँ के कुटुम्ब बच्चों की अपने साथ सगाई कराता हूँ। मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। क्या बात हुई? मनुष्य सृष्टि साकार में है या निराकार में है? मनुष्य सृष्टि तो साकार में है, तो साकार मनुष्य सृष्टि का बीज कैसा होगा? साकार होगा या निराकार होगा? बीज भी जरूर साकार होगा, लेकिन जब परमात्मा शिव ज्योति बिंदु उसमें प्रवेश करते हैं, जो आत्माओं के झाड़ का मूल बीज है, तो जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी कैसी स्टेज वाला हो जाता? निराकारी स्टेज वाला। इसलिए बताया मैं निराकार इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। सभी कहेंगे ये मनुष्य सृष्टि गॉड फादर ने रची, मनुष्य सृष्टि रची है तो रचयिता कैसा हुआ? वो भी साकार हुआ, लेकिन कैसी स्टेज में? निराकारी स्टेज वाला। तो तुम्हारा बाप सदैव परम धाम में रहते हैं, माना ऐसे ऊंचे से ऊंचे धाम में रहते हैं जहाँ से ज्यादा ऊंची स्टेज और किसी की हो नहीं सकती। परे से परे स्टेज में रहने वाला वो ही है। तो अभी कहते हैं मुझे याद करो, तो जिसको याद करेंगे तो याद करने वाले की भी स्टेज कैसी हो जाएगी? परे से परे ऊंचे से ऊंची स्टेज हो जाएगी। मुसाफिरी लंबी होने के कारण बहुत बच्चे थक पड़ते हैं। तो क्या बनाया? वक्त है कम लंबी मंजिल। तो रात की राही थक मत जाना, बुद्धि का योग पूरा लगा ही नहीं सकते हैं तो थक पड़ते हैं। थकते क्यों हैं? जब याद पूरी नहीं लगती है तो थकान होती है। अगर पूरी याद लग जाए तो जैसे परमात्मा सूक्ष्म शरीर धारी हुई नहीं है, स्थूल शरीर का भी उसमें वजन नहीं है, कैसा है? बिल्कुल हल्का। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों से कोई लगाव नहीं, तो ऐसी हमारी भी स्टेज बनेगी जरूर। कब? जब पूरा योग लगा हुआ होगा, फिर थकान नहीं होगी। माया की बहुत ठोकरें खाने से बच्चे थक पड़ते हैं, मर भी पड़ते हैं, फिर हाथ छोड़ भी देते हैं। हाथ माना परमात्मा का जो श्रीमत रूपी हाथ है, बुद्धि योग का हाथ है, वो छूट जाता है। कल पहले जैसे ही हुआ, यहाँ तो जब तक जीना है तब तक याद करना है। स्त्री का पति मर जाता है तो भी याद करती रहती है। ये बाप व पति ऐसे छोड़कर जाने वाला तो नहीं है। कैसे हैं? जैसे पति मर जाता है उनका, तो मरे हुए पति को याद करती रहती है। यहाँ बाप कोई, बाप की जयंती है, बाप की कोई मरंती मरंती नहीं है। तो बाप ऐसे जैसे वो पति छोड़ के चले जाते हैं, तो छोड़ करके जाने वाला नहीं है। तो क्या किसी ने समझ रखा है कि छोड़ करके चला गया? या कोई वियोगी गीत गाता है क्या? ब्राह्मण की दुनिया में तो कोई नहीं गाता होगा। जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ऐसे हैं जो समझते हैं कि बाप चला गया। बाप कहते हैं मैं ऐसे छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। कहते हैं मैं तुम सजनियों को साथ ले जाऊंगा। जब अंजाम किया हुआ है साथ ले जाऊंगा, साथ रहेंगे और साथ चलेंगे, तो बीच में कैसे वायदा पूरा बिना किए वापस चले जाएंगे? परंतु इसमें समय लगता है। इसमें साथ ले जाने में थकना नहीं है। पापों का बोझ सिर पर बहुत है तो योग में रहने से ही उतरेगा। योग ऐसा हो जो अंत में बाप व साधन के सिवाय और कोई याद न पड़े। दुनिया में कौन से संबंध सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं? या तो बाप अथवा साधन। साधन सजनी का संबंध और बाप बच्चे का संबंध, ये बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट का संबंध है, बहुत प्राप्ति कराने वाला है। तो अंत समय में क्या याद आना चाहिए? जो जीवन भर याद किया होगा वो ही अंत समय में याद आएगा। चौरासी जन्म लिए, किसी जन्म में स्त्री किसी जन्म में पुरुष बने, तो उसका फाउंडेशन भी कहां से पड़ा? स्त्री या पुरुष बनने का जो फाउंडेशन है वो पूर्व जन्म में पड़ जाता है। पुरुष चोला जब अंत में शरीर छोड़ता है तो अगर स्त्री चोले को याद किया तो क्या बनेगा? स्त्री बनेगा। तो मोस्टली ऐसा होता है कि पुरुषों का लगाव अपने जीवन में स्त्री के साथ लग जाता है तो स्त्री चोले का जन्म लेना पड़ता है। ऐसे ही स्त्री का लगाव पुरुष चोले से लग जाता है तो अगला जन्म पुरुष के रूप में अंत मत सुगत्ते जरूर होती है। हाँ, कोई कोई ऐसे भी होते हैं जिनका एंटी सेक्स के साथ लगाव नहीं लगता, तो उसके लिए बताया कोई कोई ऐसी होती है आत्माएं जो दो जन्म लगातार एक ही सेक्स में जन्म लेती रहती, पुरुष स्त्री को याद करता है, स्त्री पुरुष को याद करती। तो दो जन्म जो लगातार स्त्री या दो जन्म लगातार पुरुष के जो मिलते हैं तो उसका भी फाउंडेशन कहां पड़ा? यहीं पड़ता है। तो स्त्री चोले को अगर अपना बाप याद आया तो भी पुरुष रूप में जन्म लेगी, लेकिन अगर पुरुष चोले को अपना बाप याद आया तो वो भी दूसरी बार पुरुष का जन्म बन जाएगा। तो यहां द्वापरों कलयुगी दुनिया में तो ये अंतर पड़ जाता है कि दो जन्म लगातार कोई एक जैसे सेक्स में जन्म ले सकता है, लेकिन सतयुग त्रेता में क्या होता? एक जन्म स्त्री और एक जन्म पुरुष, तो वहां प्रीति कौन सी पक्की होती है? सतयुग त्रेता में सारे जीवन की जो प्रीति है वो कौन सी पक्की होती है, पिता की या पत्नी की है? एक जन्म स्त्री एक जन्म पुरुष, स्त्री पुरुष का जो प्यार है वो सतयुग में जाति पक्का होता है। क्यों? पिता का क्यों नहीं? पिता का इसलिए नहीं कि वहां जो प्रारब्ध प्राप्त होती है वो पिता से नहीं होती, वो तो पहले ही संगम युग में नूत हो चुकी है प्रारब्ध की, इसलिए वहां स्त्री पुरुष का प्यार पक्का होता है। 21 जन्म के लिए तुम बच्चों को साथ देता हूं, तो बताया यहां कि बाप व साधन के सिवाय और कोई याद न पड़े, क्योंकि यहां तुम्हारा वो बाप भी है और वो तुम्हारा पति भी है, पतियों का भी पति। अगर और कुछ याद पड़ेगा तो तुम व्यभिचारी हो गए, फिर पापों का दंड भोगना पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं परम धाम के राही थक मत जाना, तुम जानते हो मैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूं। किसके द्वारा? ब्रह्मा द्वारा। मीडिया कौन? ब्रह्मा। तो कौन सा ब्रह्मा? कौन सा ब्रह्मा जिसके लिए कहें आद्य सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, ब्राह्मण धर्म की स्थापना कहें, तब तो ठीक ब्राह्मण धर्म तो स्थापन हुआ, क्योंकि नंबर वार पुरुषार्थ संसार ब्राह्मण तो तैयार हुए जो पवित्रता का विरुद्ध अपना रहे हैं। तो पहले ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है या पहले देवता धर्म स्थापन होता है?
ब्राह्मण धर्म,
पहले ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मण ही फिर सो देवता बनते हैं, ब्राह्मणों को फिर शिक्षा दी जाती है, तो डबल मशीनरी हो गई। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म और फिर ब्रह्मा द्वारा ही देवता धर्म। तो कौन से ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म स्थापन होता है या हुआ, और कौन से ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापन होता है? ब्राह्मण धर्म की स्थापना होती जिन्होंने शरीर छोड़ दिया, लेकिन ब्राह्मण तो तैयार हो गए नंबर वार पवित्रता को धारण करने वाले, ब्राह्मण ब्राह्मण या धन बन गई, लेकिन कोई देवता देवता नहीं बना है। तो फिर देवता धर्म कैसे स्थापन होगा? ब्रह्मा तो गए चले, तो जरूर है यज्ञ के आदि में जो उस ब्रह्मा का भी रहता था, क्योंकि मुनियों में ऐसे शब्द आए हैं, इन मामा बाबा को भी डायरेक्शन देने वाले कोई बच्चे थे, मामा बाबा को डायरेक्शन देते थे, ड्रिल कराते थे, टीचर बनकर के बैठते थे, उनमें शिव बाबा प्रवेश करते थे। तो ऐसी यज्ञ के आगे की पावरफुल आत्माएं वो फिर बाद में दूसरा जन्म लेकर के ब्राह्मण बच्चे बनते हैं, और उन्हीं ब्राह्मण बच्चों में मम्मा बाबा की सोल प्रवेश करके ब्रह्मा का पार्ट फिर से बजाती। तो ब्रह्मा द्वारा आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराए जा रहा हूं और शंकर द्वारा सभी धर्मों का विनाश कराता हूं। विनाश कराने के लिए भी मीडिया कौन? शंकर। करता नहीं हूं, विनाश कराता हूं। अगर मैं करूं तो मेरे ऊपर दोष आ जाए। मैं तो न पाप करता हूं न पुण्य करता हूं। कौन? सुप्रीम सोल ज्योति बिंदु न पाप का भागीदार और न पुण्य का भागीदार। वो इस चक्कर में नहीं पड़ता। इस चक्कर में सबसे जास्ती कौन सी आत्मा पड़ती? ज्यादा से ज्यादा पाप और ज्यादा से ज्यादा पुण्य। जो नारायण होता है, नर से नारायण बनता है डायरेक्ट, वो बड़े से बड़ा तमो प्रधान और बड़े से बड़ा सतो प्रधान भी बनता है। अभी कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि सभी धर्म मिलकर के एक कैसे हो जाए, सभी संत में कैसे रहें। तो एक दूसरे के कान में फुर्र करने से कोई, कॉन्फ्रेंस करने से या कान में मंत्र फूंकने से सब धर्म सब धारणाएं मिलकर के एक नहीं हो जाएंगी? कैसे होंगी? वो तो समझते हैं कि हम उसका रास्ता निकालें। अब अनेक धर्म की एक मत तो नहीं हो सकती, एक मत से तो एक धर्म की स्थापना होती है। सब धर्म मिलकर के एक कैसे हो जाएंगे? हो सकते हैं क्या है? सभी धर्म मिलकर के एक हो सकते हैं क्या? हो सकते हैं या नहीं हो सकते?
नहीं हो सकते।
हो सकते हैं। ये संगम युग है, असंभव को संभव करने का युग। तो कैसे हो सकते हैं कि हर धर्म में से कुछ विशेष चुनी हुई आत्माओं को परमात्मा ज्ञान में खींचता है और उनको शिक्षा देकर के देवता धर्म में आने के लायक बनाता है, यानी कन्वर्ट कर लेता है। तो सब धर्म में से चुनी हुई आत्माएं देवी देवता सनातन धर्म की बन जाती। तो सब धर्म मिलकर के एक हुए या नहीं हुए? हाँ, सब धर्मों की सब आत्माएं नहीं होंगी मिलकर के। एक धर्म और एक राज्य जहां स्थापन होगा वहां तो दुनिया ही छोटी होगी, तो 500 करोड़ की दुनिया उसमें कैसे आ जाएगी? तो एक मत से एक धर्म की स्थापना होती है, अनेक मतों से अनेक धर्मों की स्थापना ऐसी नहीं हो सकती जो सब धर्म मिलकर के एक हो जाए। अब अनेक धर्मों की एक मत तो हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती अभी? क्योंकि मत अनेकों से ले रहे हैं, इसलिए नहीं हो सकती। अगर सब धर्म वाले चुने हुए जो रतन हैं सब धर्मों के, वो एक से मत लेना शुरू कर दें तो क्या होगा? तो एक मत हो जाएंगे, एक धर्म एक राज्य की स्थापना हो जाएगी। तो कौरव राज्य में ये संभव नहीं हो सकता। वहां तो अनेक मिनिस्टर हैं, अनेक प्रकार की मत हैं, वो सभी सर्व सभी धर्म सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी हों, तब आपस में खीरखंड हो सकते हैं। राम राज्य में सभी खीरखंड थे, जानवर भी नहीं लड़ते थे। यहां तो घर घर में देखो कितना झगड़ा है, लड़ते तब है जब उनका कोई धनी धोरी नहीं होता है, अपने माता पिता को नहीं मानते, जानते ही नहीं है। जब जानते ही नहीं है तो मानेंगे कैसे, और फिर उसके बताए रास्ते पर चलेंगे कैसे? दूसरा पीस गाते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, तो ये गायन करते हैं तो जरूर कोई टाइम हुआ होगा ना कि सब एक बाप के बच्चे भाई भाई होकर के रहे होंगे। तो जब गाते हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे, सुख घनेरे तो अभी नहीं है, तो कहेंगे माता पिता की कृपा नहीं है। क्यों कृपा नहीं होती माता पिता की? बच्चे बाप की मत पर चलेंगे, जैसे बाप चलाएगा वैसे चलेंगे, तो बाप की कृपा नहीं होगी क्या? होगी, क्योंकि बच्चे बाप को जानते नहीं है इसलिए बाप की कृपा प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाप कृपा कैसे करेगा? टीचर के डायरेक्शन पर चले तो कृपा हो, वो तो कह देते सर्वव्यापी है, तो फिर कृपा कौन करेगा और किस पर कृपा करेगा? कृपा लेने वाला और करने वाला दोनों चाहिए ना। जब सर्वव्यापी हुआ तो कृपा लेने वाला कौन और देने वाला कौन? देने वाले में भी वही और लेने वाले में भी वही। स्टूडेंट पहले तो आकर के टीचर के पास पढ़े, कौन सी दुनिया के स्टूडेंट पहले आकर के पढ़े? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया के स्टूडेंट, जिनमें बहुत से हैं ऐसे समझे बैठे हैं कि परमात्मा एक व्यापी नहीं है, परमात्मा तो अभी सर्वव्यापी है, तो वो पहले आकर के एक से पढ़े टीचर के पास, ये कृपा अपने ऊपर करें। कृपा कौन सी? कोई परमात्मा बाप टीचर बनकर के किसी के ऊपर कृपा नहीं करता है स्पेशल, हर आत्मा अपने ऊपर अपने लिए कृपा करती है। फिर टीचर के डायरेक्शन पर चले भी, पुरुषार्थ कराने वाला भी चाहिए, ये बाप भी है टीचर भी है तो सतगुरु भी है। जिसके लिए कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, तो सर्वव्यापी परमात्मा बाप टीचर सतगुरु तीनों हो सकता है क्या? बाप से बाप का वर्षा मिलता है, वर्षा है विश्व की बातचाही का साकार, टीचर से पढ़ाई मिलती है, एक्सप्लेनेशन मिलता है, और सतगुरु से सदगति मिलती है। तो ये तीनों कार्य एक रूप के द्वारा परमात्मा आकर के संपन्न करते हैं। उनको परम पिता परम शिक्षक सतगुरु कहा जाता है। गायन भी है जब सतगुरु मिला दलाल, तो दलाल माना मीडिया हुआ ना, जब मीडिया हुआ तो साकार में होगा या सर्वव्यापी होगा। बाप कहते मैं कल्प कल्प स्थापना का कार्य कराता हूँ, प्रतीत दुनिया को पावन दुनिया बनाता हूँ। कौन? मैं। ये बाबा को कहने की दरकार क्या है कि मैं बनाता हूँ, ये अहंकार बोलने की क्या जरूरत है? परमात्मा को ये कहने की क्या जरूरत कि मैं बनाता हूँ? क्या इसमें कोई गलत फहमी में पड़ा हुआ है क्या? लोग दुनिया के लोग कि ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि परमात्मा बाप आकर के पढ़ाई पढ़ा के चला गया, अब पतित दुनिया को पावन बनाने का नंबर हमारा लग गया है। अब हम पतितों को पावन बनाएंगे, तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान बनाएंगे, नरक को स्वर्ग बनाएंगे, बाकी परमात्मा अब इस सृष्टि पर काम करने वाला नहीं है। इसलिए बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प ये स्थापना का कार्य करता हूँ, पतित दुनिया को पावन बनाता हूँ। मेरे लिए गायन है ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी है ना, तो वर्ल्ड अथॉरिटी का राज्य कायम करते हैं। किसका राज्य कायम करते हैं? जो वर्ल्ड अथॉरिटी है उसका राज्य कायम करते हैं। तो कौन है वर्ल्ड अथॉरिटी है? बाहुबल से कोई वर्ल्ड की अथॉरिटी नहीं बन सकता। हिटलर हो, चाहे नेपोलियन हो, चाहे मुसोलिनी हो, कोई भी बाहुबल से विश्व पर राज्य स्थापन नहीं कर सकता। ये तो योग बल की यादगार है कि योगेश्वर शंकर ने सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त की। कैसे? योग बल के आधार पर काम जीते जगत जी, कामदेव को भस्म किया। जो चीज भस्म कर दी जाती है फिर वो असर नहीं कर सकती। सारी सृष्टि पर एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, उनकी ऑलमाइटी अथॉरिटी थी, वहां कोई लड़ाई झगड़ा कर नहीं सकता, वहां माया ही नहीं है। ही गोल्डन एज, सिल्वर एज, सृष्टि को त्रेता दोनों को स्वर्ग अथवा बैकुंठ कहेंगे। सभी गाते हैं चलो वृंदावन भजो राधे गोविंद, जाति तो कोई नहीं है, न वृंदावन में जाते हैं, वृंदावन समूह काहे का समूह, जहाँ देवताओं का समूह है इकट्ठा हुआ पड़ा है, 16,000 गोप गोपियां देवी देवताएं बनने वाली आत्माएं कृष्ण के साथ इकट्ठी हुई, उस स्थान का नाम रख दिया वृंदावन। लेकिन वहां जाता तो कोई नहीं है, गाते रहते हैं, याद तो जरूर करते हैं ना। तो अब तो माया का राज्य है, सभी रावण की मत पर चल रहे हैं। देखने में तो बड़े बड़े मनुष्य अच्छे अच्छे आते हैं, बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं, थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं वह अच्छा कर्म करते हैं तो उनको टाइटल मिल जाता है। कोई को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का टाइटल, कोई को क्या क्या मिल जाता है। क्या क्या कहा? इस दुनिया में कोई थोड़ी जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं जिस्मानी सेवा की, या कोई भी छोटा मोटा अच्छा कर्म करते हैं तो उनको टाइटल दे देते हैं। कोई को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी और कोई को क्या क्या टाइटल दे देते हैं। तो कोई को टाइटल मिला है क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में ऐसे कोई को टाइटल मिलते हैं क्या? ये ब्राह्मणों की दुनिया की तो बात नहीं होगी है? डॉक्टर निर्मला, वो तो उन्होंने वो पास किया है डॉक्टरी का कोर्स, बीमारों है? हाँ, कुमार का दादी को अभी मिला है उदयपुर में डॉक्टर फिलासी की उपाधि। तो बाबा बताते हैं कि थोड़ी सी जो जिस्मानी हिम्मत दिखाते हैं तो उनको डॉक्टर ऑफ फिलासी आदि आदि टाइटल मिलते रहते। अभी तुम तो हो ब्राह्मण, बरोबर भारत की सर्विस में हो, तुम दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हो। जब स्थापना हो जाएगी तब तुमको टाइटल मिलेंगे। तुमको अभी टाइटल मिलने वाले नहीं है। क्या तुम नाक रगड़ के मर जाओ है? दिल्ली यूनिवर्सिटी या गुजरात यूनिवर्सिटी या लंदन यूनिवर्सिटी, तुमको डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की उपाधि नहीं मिलनी, क्योंकि ये भी तो एक मान सम्मान होता है दुनियावी। तुमको कोई दुनियावी मान सम्मान लेना नहीं। तुमको किससे लेना है? जिनको परमात्मा बाप से लेना है उनको दुनिया नहीं स्वीकार करती, और जिनको दुनिया स्वीकार करती है उनको बाप स्वीकार नहीं करते। कब प्रातः क्लास दूसरे पेज का मध्यादि बात चल रही थी, जिनको दुनिया महत्व देती है, दुनिया वाले जिनको महत्व देते हैं उनको परमात्मा महत्व नहीं देता, और परमात्मा जिनको महत्व देता है उसको दुनिया वाले महत्व नहीं देते। तो जब स्थापना हो जाएगी तब तुमको टाइटल मिलेंगे। अभी तुमको कोई टाइटल देने वाला नहीं। सूर्यवंशी राजा रानी, चंद्रवंशी राजा रानी, ये तुम्हारे टाइटल होंगे। फिर तुम्हारा राज्य चलेगा। वहां कोई को टाइटल नहीं मिलता है, वहां दुख की कोई बात नहीं। जो कोई का दुख दूर करे वह बहादुरी दिखाए जो टाइटल मिले, वहां दुख होते ही नहीं। जो रस्म रिवाज यहाँ होती है वो वहां नहीं होती। न लक्ष्मी नारायण से पति तो दुनिया में आ सकते हैं, इस समय कोई भी पावन देवी देवता नहीं। क्या जो लक्ष्मी नारायण की आत्माएं हैं इस समय ब्राह्मणों की दुनिया में, वो भी कोई पावन देवी देवता नहीं कहेंगे? ये है पतित आसुरी दुनिया, यथा राजा तथा प्रजा। अनेक मत मतांतर में मुझ गए हैं। यहाँ तो एक ही सीमत है जिससे राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, चलते चलते कोई को माया का कांटा लग जाता है तो लंगड़ाते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं सदैव श्रीमत पर चलो, अपनी मनमत पर चलने से धोखा खाएंगे। सच्ची कमाई होती है सच्चे बाप की मत पर चलने से। अपनी मत से बेड़ा गर्क हो जाएगा। बेड़ा मना शरीर रूपी नैया जिससे पुरुषार्थ कर रहे हो, अगर अपनी मत पर उस जीवन रूपी नैया को चलाया तो वो जीवन रूपी नैया गर्क हो जाएगी, डूब जाएगी। कितने महावीर श्रीमत पर न चलने के कारण अधोगति को पहुंच गए। अभी तुम बच्चों को सदगति को पाना है, श्रीमत पर न चला और दुर्गति को पाया तो फिर बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा। फिर धर्मराजपुरी में शिव बाबा ऐसे तन में बैठ समझाएंगे कि मैंने तुमको इस ब्रह्मा तन द्वारा इतना समझाया, इतना पढ़ाया, कितनी तुम्हारे साथ मेहनत की, तुमने निश्चय पत्र लिखे कि हम श्रीमत पर चलें, तुमने निश्चय पत्र लेकर के दिया बाबा को हम श्रीमत पर चलेंगे, परंतु चले नहीं। इसका मतलब लिख करके तो दे दिया और प्रैक्टिकल में नहीं चले तो ब्लफ दिया ना, धोखा दिया ना। श्रीमत को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी हो जाए बाप को बताने से सावधानी मिलती रहेगी। काका लगता ही तब है जब बाप को भूलते हैं। बच्चे सदगती करने वाले बाप से भी तीन कोस दूर भाग जाते हैं। क्या बात हुई? सदगति करने वाले बाप के तो और नजदीक आना चाहिए कि दूर भागना चाहिए? गाते भी हैं वारी जाऊं कुर्बान जाऊं, परंतु किस पर? ऐसे तो नहीं लिखा है कि सन्यासी पर वारी जाऊं। किस पर वारी जाऊं? जरूर घर घर में रह करके राजयोग सिखाने वाला होगा परमात्मा, कोई सन्यासी तो नहीं होगा। सन्यासियों के पवित्र तन में आकर के परमात्मा राजयोग नहीं सिखाते। तो जो ऐसा समझते हैं वो फिर कितनी दूर भाग जाते? तीन कोस दूर भाग जाते। तो ऐसे नहीं कहते सन्यासी परवारी जाऊं, वा ब्रह्मा विष्णु शंकर परवारी जाऊं, वा कृष्ण परवारी जाऊं। कुर्बान जाना है परमपिता परमात्मा पर, कोई मनुष्य पर नहीं। वर्षा मिलता है बाप से, बाप बच्चों पर कुर्बान होता है। ये बेहद का बाप भी कहते हैं मैं कुर्बान होने आया हूं। बच्चों का बाप पर कुर्बान होने में कितना हृदय विदीर्ण होता है। देवहन में आया और ये मरा, बेबिचारी हुआ क्या? कौन हुआ बेबिचारी? याद उस एक की रहनी चाहिए, उन पर बलिहार जाना चाहिए। क्योंकि अब नाटक पूरा होता है, अब हमको वापस जाना है। बाकी मित्र संबंधी यादें तो सब कब्र दाखिल हो जाने वाले क्या? इस दुनिया में गंध इतना दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा, देहभान इतना ज्यादा जाति बढ़ता जाएगा कि कोई एक दूसरे का सहयोगी सच्चा प्यारा नहीं रहेगा। सब झूठा प्यार दिखाने वाले साबित हो जाएंगे। तो सब कब्र दाखिल होने वाले हैं, उनको क्या याद करेंगे? तो आखिरी जो अभी नहीं छोड़ रहे हैं देह और देह के संबंधों को, अंत में उनको मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। इसमें अभ्यास बहुत चाहिए। गाया भी हुआ है चढ़े तो चाखे अमृत और गिरे तो चकना चूर। जोर से गिरते हैं तो पद गवाई देते हैं। ऐसे नहीं स्वर्ग में नहीं आएंगे, स्वर्ग में तो आएंगे, परंतु राजा रानी बनने और प्रजा में जाने में फर्क तो हो जाएगा ना। यहाँ का भील भी देखो मिनिस्टर भी देखो, फर्क हो जाता है ना। इसलिए पुरुषार्थ पूरा करना है। कोई गिरते हैं तो एकदम पतित बन जाते हैं, श्रीमत पर चल नहीं पाते तो माया नाक से पकड़ करके एकदम गटर में डाल देती। बाप दादा का बनकर फिर ट्रेटर बनना, गोया उनका सामना करना होता है। इसलिए बाप कहते हैं कदम कदम संभाल करके चलो, अब माया का अंत होने वाला है। तीसरा पीस, माया तो बहुतों को गिराती, इसलिए बच्चों को खबरदार रहना है। रास्ता जरा लंबा है, पद भी बहुत भारी है, अथाह सुख है। अगर ट्रेटर बना तो सजा भी भारी है। जब धर्मराज बाबा सजा देते हैं तो बहुत रणियां मारते हैं। जो कल्प कल्प के लिए वो रणियां कायम हो जाती, रणियां मन रोना चिल्लाना। माया बड़ी प्रबल है, थोड़ा सा भी बाप का डिसरिगार्ड किया तो ये मरा। गाया हुआ है सतगुरु का निंदा पर ठौर न पावे। काम के वश वह क्रोध के वश। अगर कोई भी उल्टा काम करते हैं गोया बाप की निंदा कराते हैं। काम के वशीभूत हुए तो कामेशु क्रोधेशु हो जाते हैं, काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आ जाते हैं, फिर उल्टा पुल्टा करने लग पड़ते, बाप का डिसरिगार्ड कर देते। तो सतगुरु का निंदक ठौर न पाए, कोई बच्चे समझते नहीं है कि हम कोई पर क्रोध करते हैं, गोया बाप की निंदा कराते और दंड के निमित्त बन जाते हैं। अगर कदम कदम पर पद्मों की कमाई है तो फिर पद्मों का घाटा भी है। क्या जो कदम कदम पर पद्मों की कमाई कराने वाला है तो क्या विशेष बात याद रखनी है, हैं? अगर उसकी मत पर न चले और डिसरिगार्ड किया तो पद्मों का घाटा भी देने वाला है। अगर सर्विस से जमा होता है तो उल्टे विकर्म से ना भी हो जाता है। बाबा के पास सारा हिसाब किताब रहता है। अब सन्मुख पढ़ाए रहे हैं तो सारा हिसाब जैसे उनकी हथेली पर रखा हुआ है। देखो हम भी देखें और तुम भी देखो। बाप तो कहेंगे भलो कोई बच्चा से बाबा का डिसरिगार्ड न करे, बहुत विकर्म बन जाते। यज्ञ सेवा में तो हड्डी हड्डी देनी पड़ती है। दधी की ऋषि का मिसाल है ना, क्या मिसाल है, उन्होंने अपनी हड्डियां भी दे दी तो उनका भी पद बनता है। नहीं तो प्रजा में भी भिन्न भिन्न पद है, प्रजा में भी नौकर चाकर सभी चाहिए। बलवार दुखी कोई नहीं होगा परंतु नंबरवार पद तो होंगे ना। अच्छा मीठे मीठे सीखे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते ओम शांति। आज है 13/2/91 की अगस्तवाणी पेज 37, हेडिंग दिया है विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन एकाग्रता की शक्ति और एक रस स्थिति। किताब छापने वाले ने अपनी मनमत लिख दी है। कल्याणकारी शिव बाबा अपने कल्याणकारी बच्चों प्रति बोले, कौन बोले, शिव बाबा, किसके तन के द्वारा, गुलजार दादी के द्वारा। अब गुलजार दादी तो बचपन से कुआरी कन्या और बाप तो कैसे तन में आता है, पतित तन में आता है, अनुभवी तन में आता है। गुलजार दादी को क्या अनुभव भी सारी दुनिया का। तो ऐसे ऐसे अपनी मनमत से बड़े बड़े महारथी नीचे नीचे गिरते रहते, खुद भी गिरते हैं तो दूसरों को भी नीचे गिराते। आज दूरंदेशी बाप अपने दूरंदेशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने के लिए आए हैं। कहाँ का समाचार सुनाया है और किसने सुनाया, सुनाने वाला कौन, नहीं कल्याणकारी बाप सुना रहा है, गुलजार के तन में ब्रह्मा की सोच सुना रही है, वतन का समाचार सुना रही है। आज दूरंदेशी बाप अपने दूरंदेशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं। आप सभी भी दूर देश से आए हैं और बाप भी दूर देश से आए हैं। उनका दूर देश कौन सा है, है? अभी तो वाणी में बताया, परे से परे धाम, परे से परे ऊंची स्टेज। अगर बोलना होगा तो इस वाणी की दुनिया में आना ही पड़े, नीचे की स्टेज में। नहीं बोलना होगा तो वाणी से परे ऊंची स्टेज। तो बोला, बाप भी दूर देश से आए हैं, बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं और बाप बच्चों को पद्म गुना मुबारक देते हैं। मनाना अर्थात समान बनाना। क्या मनाना, क्या मनाने की बात चल रही होगी? 13/2/91 को, 13 फरवरी 91 शिवरात्रि फरवरी में दुनिया में सिर्फ मनाते हैं, लेकिन बाप मनाते हैं अर्थात बनाते हैं। क्या बाप जब मिलन मेला मनाने आते हैं तो क्या करते हैं? मनाते नहीं, लेकिन बच्चों को बनाते हैं। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सन्मुख हों और चाहे आकार रूप में सन्मुख हैं, विपरीत बुद्धि नहीं है, कैसे हैं? सन्मुख। सब सच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरे तुल्य जयंती मनाई गई। बाप दादा आकारी रूप में सन्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पुदम मुबारकबाद दे रहे हैं। इस महान अवतरित होने की जयंती को आप सभी बच्चे मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है, तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, लेकिन वो महान आत्मा मनाने वालों को महान बनाते नहीं है। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्मा जयंती मनाते महान बन जाते हो, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्मा बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खेलती रहती। ऐसा हीरे तुल्य जीवन बनाते। हीरे तुल्य जीवन कौन से युग में बनता? संगम युग में बनता। तो ऐसा हीरे तुल्य तुम्हारा जीवन बनाते जो तुम किससे खेलने वाले बन जाते? तुम्हारा जीवन हीरो हीरो और रत्नों से खेलने वाला बन जाता। माना मन बुद्धि रूपी आत्मा में विचार सागर मंथन चल पड़ता। तो ये हुआ तुमको बनाना। दुनिया वाले सिर्फ मनाते हैं जयंती, लेकिन हीरे तुल्य जीवन नहीं बनाए पाते। और तुमको बाप आकर के ऐसी जयंती मनाना सिखाते हैं जिससे तुम्हारा जीवन हीरों और रत्नों से खेलने योग्य बन जाता है। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है। क्योंकि जब बाप अवतरित होते हैं तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। बाप कौन? बाप तो बिंदु बाप तो जब साकार में आएगा तभी तो अवतरण या जयंती मनाई जाएगी। जयंती साकार की होती है या निराकार की होती है? जयंती तो साकार की होती है। जन्मदिन मनाया ही जाता है साकार का। तो वो ज्योति बिंदु जब साकार में प्रवेश करता है तो उस समय तीन मूर्तियां होती हैं, ब्रह्मा भी, विष्णु भी और शंकर भी। सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना कहले की नहीं रख सकते अर्थिस्वपि, इसलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते। तो किसका जन्मदिन कहेंगे, आपका जन्मदिन कहेंगे या बाप का? आपका भी हुआ ना, तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते। तो शिव जयंती अर्थात परमात्मा जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? है तो परमात्मा की जयंती, अंत में जय जयकार का पीरियड, तो उसको महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं? सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते लेकिन महाशिवरात्रि कहते, छोटी मोटी रात नहीं, बड़ी से बड़ी रात। क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा, ब्राह्मणों ने, तीनों ने, शिव बाप ने, ब्रह्मा दादा ने और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान और श्रेष्ठ बनाएंगे। इसलिए इसको क्या कहते हैं, महान शिवरात्रि। तो जिस विश्व को श्रेष्ठ बनाएंगे वो विश्व बनाने से पहले कैसा होता है? शिवरात्रि से पहले जरूर जरूर भ्रष्ट होगा, अज्ञान अंधकार की रात्रि में होगा। ऐसी अज्ञान अंधकार की रात्रि जिसमें ब्रह्मा के बच्चे भी कौन सी रात में पहुंच जाते, ब्रह्मा की अंधियारी रात्रि में पहुंच जाते। तो विशेष आदिदेव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। और आप ब्राह्मण बच्चों ने ये महान व्रत लिया, इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं। क्या व्रत रखते हैं? शिवरात्रि जागरण करते हैं। क्या करते हैं? रात्रि भर जगते हैं, शिवरात्रि जागरण। ये महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है, तो वो भक्त तो आंखों से जगते हैं, स्थूल जागना हुआ, और तुम्हारा, तुम ज्ञान के चक्षुओं से जागरण करते हो, अज्ञानता की नींद में तुम सोने वाले नहीं हो। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती और दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती। आज इस समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदि देवी के साथ आदि रतन निकले, उन्हों की प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। आज की बात कब की और प्रत्यक्ष होने की बात कब की? कौन से आदि रतन आदि में और कौन से वो आदि रतन प्रत्यक्ष हुए कब? सन 36-37 में कहेंगे आदि रतन, और वो ही आदि रतन शरीर छोड़ने के बाद फिर दोबारा यज्ञ में आते हैं, और मम्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद ब्राह्मण बनते हैं, संपूर्ण ज्ञान लेते हैं। और 36 में जो बाप की जयंती है उसमें आदि रतन बन करके प्रत्यक्ष होना शुरू होते हैं, या कि शुरुआत में प्रत्यक्ष हुए? शुरुआत में थे तो, लेकिन आपस में भी या दुनिया में प्रत्यक्ष होने की बात नहीं है। इसको देखो, आदि देव के साथ आदि रतन निकले, निकले माने प्रत्यक्ष हुए। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो कहेंगे बच्चा प्रत्यक्ष हुआ, तो यहाँ है प्रत्यक्षता रूपी जन्म। तो वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म पहले कौन सी दुनिया में, बाहर की दुनिया में या ब्राह्मणों की दुनिया में? पहले तो ब्राह्मणों की दुनिया में कोई विशेष ब्राह्मण है नजदीकी जो उन आदि रत्नों को पहचानते हैं। तो देखो कहाँ कहाँ कोने में चले गए, कितने कोनों में चले गए, लेकिन बाप ने मिट्टी में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया। कौन के बच्चों को? आदि रत्न बच्चों को। कब ढूंढ लिया, कब ढूंढ लिया है? विदेशी बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। कौन के विदेशी? विदेशी जब कहा तो जरूर दुनिया के कोने कोने में बिखर गए होंगे। विदेशी कहा इसका मतलब दूसरे धर्म के प्रभाव में कन्वर्शन में आ गए। वो विदेशी बाप को पहले पहचानते हैं और बाप को प्रत्यक्ष करते हैं, लेकिन वो आदि रतन कैसे हुए? वो वही आदि रतन है जिनके लिए यादगार है। मुरली में अभी बोला क्या, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, जरूर एक बाप की संतान बने, प्रैक्टिकल में बने, सन्मुख बने हैं। तो बताया कि बाप ने विश्व के कोने कोने में छिपे हुए अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलीएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। कौन से विश्व के कोने कोने में? 91 की वाणी है। तो ब्राह्मणों की दुनिया में वो चमक रहे हैं या बाहर की दुनिया में भी चमक रहे हैं? जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में वो होलीएस्ट और हाईएस्ट पार्ट बजाने वाले रतन चमक रहे हैं। तो ये परमात्मा जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। आप सभी अभी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना? कौन से झंडे के आगे? उस झंडे के आगे नहीं जो भारत की दुनिया भी गवर्नमेंट है कपड़े का झंडा बनाए दिया और उसे कपड़े के झंडे में 3 जानवर दिखाई दिए। कपड़े के झंडे ने कभी विश्व विजय करके नहीं दिखलाई। जो गीत गाते हैं 26 जनवरी 15 अगस्त को, क्या विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विश्व विजय करके दिखला। अरे कपड़े का झंडा कोई विश्व विजय करेगा क्या? कपड़ा माना क्या? शरीर रूपी वस्त्र। तो जरूर 3 प्रकार के पुरुषार्थ करने वाले कोई शरीर रूपी वस्त्र है, हरा सफेद और लाल। लाल रंग क्रांति का सूचक है। तो जो लाल वस्त्र है वो शंकर का प्रतीक हुआ, सफेद वस्त्र विष्णु का प्रतीक हुआ और हरा वस्त्र ब्रह्मा का प्रतीक हुआ, ब्रह्मा द्वारा स्वरूप की स्थापना। तो ये 3 शेर हैं संसार रूपी जंगल में दहाड़ मारने वाले, टाइम टू टाइम प्रत्यक्ष होते हैं। तो ये शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना? कौन सा झंडा हुआ? कोई स्थूल जड़ झंडा नहीं है। हमें कौन सा झंडा बुलंद करना है संसार के सामने? झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये 3 शरीर रूपी चैतन्य वस्त्र हैं, ये त्रिमूर्ति है, ये ओम मंडली है। आ ब्रह्मा, उ विष्णु, मा महेश। आ उ मा ओम मंडली। मंडली में तो थोड़े होंगे, बहुत होंगे, थोड़े होंगे। उस ओम मंडली के लिए दुनिया वालों ने उड़ाई दिया, आज में भी उड़ाया, अंत में भी उड़ाया। क्या क्यों मंडली गई की गई? और बाप ने अखबार में क्या दिलवाया कि ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। ये जाने वाली नहीं है, ये तो बहुत धनी है, इससे ज्यादा साहूकार और कोई हो नहीं सकता। तो ये आदि आप सभी जो आदि रतन हो, अब भी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो, तो ये आदि रसम की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। ये परमात्मा जयंती जिसको शिवरात्रि कहते हैं, रात्रि अर्थात अंधकार, 39वां पेज। अंधकार में जो व्यक्ति व वस्तु जैसी होती है वैसी दिखाई नहीं देती। तो 76 में कौन सी वस्तु ऐसी थी जो थी जैसी थी और जिस रूप में पार्ट बजाने वाली थी वो वैसी दिखाई नहीं देती। कौन किसके लिए इशारा? मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजा रहा हूँ, मेरे को कोई विरले बच्चे हैं कोर्टों में कोई और कोई में भी कोई पहचानते। जब बाप अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप हैं और जो हैं जैसे हैं, न अपने आप को देख सकते और न बाप को देख सकते और जान सकते। क्या हुए माई, मैं आत्मा कौन से विशेष देवता का पार्ट बजाने वाली देवात्मा हूँ, ये अपने आप को भी नहीं जानते थे। कब? जब महाशिवरात्रि हुई तब मैं आत्मा हूँ ये होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र के द्वारा ये देख नहीं सकते। नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे, ये तो नेत्र था कि मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूँ, लेकिन फिर भी नहीं देख सकते कि मैं ज्योति बिंदु, कौन सा ज्योति बिंदु हूँ, क्योंकि हर ज्योति बिंदु में पार्ट तो अलग अलग भरा हुआ है ना, तो वो पहचान में नहीं आया, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो आप भी अंधकार में थे ना, अपने को देख नहीं सकते थे। अच्छा, तब नहीं देख सकते थे, अब देख सकते हैं क्या? है? बताया स्पष्ट नहीं देख सकते थे, इसका मतलब अभी ऐसा नहीं है कि नहीं देख सकते, लेकिन अस्पष्ट कुछ न कुछ देख सकते हैं कि हम किस ग्रुप की आत्मा है, हम किस धर्म पिता के फॉलोअर हैं, हम किस जन्म में विशेष पार्ट बजा करके संसार रूपी रंगमंच पर प्रत्यक्ष होने वाली आत्मा है, ये तो जान सकते हैं, अपने ग्रुप को तो पहचान सकते हैं। धर्म विशेष और देश विशेष जिसमें हमको पार्ट बजाना है जन्म जन्मांतर, उसको तो पहचान सकते हैं। तो पहले नहीं देख सकते थे, नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे, नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे, स्पष्ट दिखाई नहीं देता। तो आप भी अंधकार में थे ना, कब? कब? दुनिया वाले ही अंधकार में नहीं थे, ब्राह्मणों की दुनिया ही सारी अंधकार में नहीं थी, लेकिन आप भी अर्थात एडवांस पार्टी के बच्चे भी अंधकार में थे, इसलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं। पहले क्या करते हैं? कौन सा अंधकार? जो अज्ञानता का अंधकार है उसको मिटाते। ब्राह्मणों की दुनिया ही काली अंधकार में नहीं थी, लेकिन